लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 10 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित किया, जहां उन्होंने गलती करने वाले भाई बहनों को सुधार करने में मदद देने के महत्व पर प्रकाश डाला और यीशु के उस निमंत्रण का स्मरण दिलाया जिसमें वे गलती करने वाले से व्यक्तिगत बात करने की सलाह देते हैं, उसकी निंदा फैलाने की नहीं। संत पापा ने कहा,
करी फ्रतेली ए सोरेले, बुंजोर्नो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज का सुसमाचार पाठ भाइयों के सुधार के बारे बोलता है, जो प्रेम की एक बड़ी अभिव्यक्ति है और बहुत अपेक्षाएं रखने वाला है।
Quando un fratello nella fede commette una colpa contro di te, tu senza rancore aiutalo.
जब कोई विश्वासी भाई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो तुम बिना विद्वेष उससे सुधार कर उसकी सहायता करो। संत पापा ने कहा, दुर्भाग्य से अक्सर गलती करने वालों के इर्द गिर्द जो पहली चीज बनती है वह शिकायत होती है, जिसमें संबंधित व्यक्ति के अलावा हर किसी को पूरी जानकारी के साथ गलती का पता चलता है। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है और यह ईश्वर को प्रसन्न नहीं करती। मैं इसे दोहराते हुए नहीं थकता कि गपशप या शिकायत लोगों के जीवन एवं समुदाय में एक महामारी है, क्योंकि यह विभाजन दुख और ठोकर की ओर ले जाती है और कभी भी बढ़ने और उन्नति करने नहीं देती। क्लेयर वर्क्स के एक महान आध्यात्मिक गुरु संत बर्नर्ड ने कहा है, बेकार जिज्ञासा एवं छिछले शब्द अहंकार के सिरे पर पहला कदम है, जो ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर ले जाता है और मनुष्य को विनाश एवं बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। इसके विपरीत यीशु हमें दूसरे तरह से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। आज वे हमसे यही कह रहे हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ, यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। संत पापा ने कहा,
फ्राते ए लुई सोलो, पार्लाची अ तू पर तू।
इसके बारे उससे आमने सामने बात करें, निष्पक्ष रूप से उसे समझने में मदद करें कि कहां उसने गलती की है। उसकी भलाई के लिए उसे शर्म से बाहर निकालने और उपयुक्त साहस प्राप्त करने के लिए मदद करें, जो उससे बदनाम करना नहीं बल्कि विनम्रता एवं सज्जनता से बतलाना है। लेकिन हम पूछ सकते हैं, किसका क्या फायदा यदि वह नहीं समझता है? संत पापा ने कहा, तब भी हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, पर शिकायत करने वाले दल के साथ नहीं, बल्कि यीशु कहते हैं, और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, अर्थात जो अपने पथभ्रष्ट भाई की सचमुच मदद करना चाहते हैं। और यदि तब भी वह नहीं समझता है तब यीशु कहते हैं कि समुदाय को शामिल करो, लेकिन यहाँ भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि व्यक्ति बदल सके। अंगुली दिखाना ठीक नहीं है, वास्तव में ऐसा करने से गलती करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करने में अधिक कठिनाई होती है। इसके विपरीत समुदाय को उसे यह महसूस कराना चाहिए कि जब वे गलती की निंदा कर रहे हों तब भी प्रार्थना और स्नेह के द्वारा उसके साथ हैं। संत पापा ने कहा कि उसे क्षमा करने एवं पुनः शुरू करने में मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहें। हालांकि आज यीशु कहते हैं, यदि वह समुदाय या कलीसिया की नहीं सुनता है तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। लेकिन हम जानते हैं कि उन चीजों में से एक जिसके लिए उस समय की सही सोच ने उसे माफ नहीं किया था, वह वास्तव में गैर यहूदियों और नाकेदारों के साथ रहना था। वही सुसमाचार प्रचारक मत्ती, जिन्होंने सुसमाचार लिखा है, इसे अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वे उन लोगों में से एक थे जिन्हें यीशु ने तब बुलाया था जब वे चुंगी जमा कर रहे थे। तब संत पापा ने विश्वासों को चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, अब आइए हम अपने आप से पूछें, मुझे गलती करने वाले व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या मैं इसे अंदर रखता और आक्रोश क्षमा करता हूँ? क्या मैं उसके पीठ पीछे बात करता हूँ, अथवा क्या मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छा करने में मदद करने के लिए सहायता की याचना करता हूँ? क्या हमारे समुदाय उन लोगों की चिंता करता है जो गिर जाते हैं, जिससे कि वे फिर उठ सकें और पुनः एक नया जीवन शुरू कर सकें? क्या यह समुदाय अपनी अंगुली दिखाता या अपनी बाहें खोलता है? तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा, माता मरियम जिन्होंने अपने पुत्र की निंदा सुनने पर भी उनसे स्नेह करती रही, हमें मदद करें कि हम हमेशा अच्छाई के रास्ते की खोज कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने मोरक्को के भूकंप पीड़ितों के साथ साथ पोलैंड, इथोपिया और यूक्रेन के लोगों की याद की। उन्होंने मोरक्को के लोगों के लिए अपनी प्रार्थना एवं आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया, जहां भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली है। माराकेश में शुक्रवार रात 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे बड़े पैमाने पर क्षति एवं विनाश हुए। रविवार तक माराकेश और आसपास के इलाकों में कम से कम 2000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। रविवार को देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने मोरक्को के लोगों को अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया। उन्होंने घायलों, मौत के शिकार लोगों एवं उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
al caro popolo del Marocco, colpito da un devastante terremoto.
मैं विनाशकारी भूकंप से प्रभावित मोरक्को के प्रिय लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं घायलों के लिए प्रार्थना करता, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और उनके परिवारों के लिए भी। संत पापा ने कहा, मैं बचाव कर्मियों और उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लोगों की पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुखद क्षण में सभी की ठोस सहायता लोगों को सहारा प्रदान करे। उन्होंने सभी विश्वासियों को मोरक्को के लोगों के करीब रहने के लिए आमंत्रित किया। रविवार को पोलैंड के मार्कोवा में शहीद जोसेफ और विक्टोरिया ओल्मा को उनके सात बच्चों के साथ धन्य घोषित किया गया। 24 मार्च 1944 को नाजियों द्वारा सताए गए कुछ यहूदियों को शरण देने के कारण पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया था। संत पापा ने कहा, उन्होंने उस समय की नफरत एवं हिंसा का विरोध सुसमाचारी प्रेम से किया था। यह पोलिश परिवार जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंधेरे में प्रकाश की किरण का प्रतिनिधित्व किया, हम सभी के लिए अच्छाई की इच्छा रखने और जरूरतमंद लोगों की सेवा में एक आदर्श उदाहरण बने। तब संत पापा ने ताली बजाकर इस धन्य परिवार को सम्मानित किया।
Un applauso a questa famiglia deviati.
इसके बाद यूक्रेन की याद करते हुए संत पापा ने कहा, और उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए आइए हम प्रेम की शक्ति के साथ हथियारों की ताकत का, प्रार्थना की दृढ़ता के साथ हिंसा की बयानबाजी का विरोध करें। आइए इससे सबसे पहले उस देश के लिए करें जो युद्ध से पीड़ित है। विशेष रूप से हम पीड़ित यूक्रेन के लिए अपनी प्रार्थनाएं तेज करें जो बहुत अधिक कष्ट झेल रहा है। 12 सितंबर को इथोपिया में नया साल मनाया जाएगा। संत पापा ने इथोपिया के लोगों को भाईचारापूर्ण मेल मिलाप एवं शांति के वरदान के साथ नए साल की शुभकामनाएं दी।
Desidero porgere i più cordiali auguri all'interna popolazione auspicando che sia benedetta con i doni della riconciliazione fraterna e della pace.
इसके बाद संत पापा ने नॉर्मांडी में माउंट सेंट मिशेल के मठ की याद की जब मंदिर के अनुष्ठान की सहस्राब्दी का उत्सव मना रहा है। तत्पश्चात उन्होंने धर्म शिक्षा वर्ष शुरू होने से पहले सलेशन प्रकाशक एलेदिची द्वारा संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों को दान की गई धर्म शिक्षा की पुस्तक स्टेप बाय स्टेप के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने धर्म शिक्षा में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों को यीशु से मिलने की खुशी की कामना की। और अंत में सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया और अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
करो
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। अपंग श्रमिकों के राष्ट्रीय संघ के करीब 300 सदस्यों को संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन में स्वागत किया जो अपने संघ की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसकी स्थापना 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। संत पापा ने कहा, आपने उस संदर्भ में पहला कदम उठाया है जो हमें याद दिलाता है कि हर सशस्त्र संघर्ष आज भी अपने साथ विकलांग लोगों की भीड़ ले आता है और यह कि नागरिक आबादी युद्ध के पागलपन के नाटकीय परिणाम भुगतती है। एक बार जब संघर्ष समाप्त हो जाता है तब शरीरों और दिलों में भी मलवा बना रहता है। सबसे कमजोर और वंचित लोगों से शुरू करके जीवन और उसकी गरिमा की सुरक्षा और संवर्धन के माध्यम से दिन ब दिन साल दर साल शांति का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। संत पापा ने काम पर दुर्घटनाओं के संबंध में नागरिक कानून में सुधार और खुद को विकलांग पाए जाने वाले लोगों के पेशेवर पुनः एकीकरण के लिए उनके द्वारा प्रचारित पहल के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि वास्तव में ये न केवल विकलांगता के विभिन्न रूपों से पीड़ित लोगों के लिए सही कल्याण और सामाजिक सुरक्षा देखभाल की गारंटी देने का सवाल है बल्कि उन लोगों को नए अवसर देने का भी है जिन्हें फिर से एकीकृत किया जा सकता है और जिनकी गरिमा को पूरी तरह से मान्यता देने की आवश्यकता है। संत पापा ने दुर्घटना की रोकथाम और सुरक्षा नीतियों विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के पक्ष में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने हेतु उनके कामों के लिए विशेष धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यक्तिगत देखभाल का एक अभिन्न अंग है। दरअसल एक नियोक्ता के लिए यह पहला कर्तव्य और भलाई का पहला रूप है। हालांकि ऐसे रूप जो विपरीत दिशा में जाते हैं और जिन्हें एक शब्द में केयर वॉशिंग कहा जा सकता है, ऐसा तब होता है जब उद्यमी सुरक्षा में निवेश करने के बजाय कुछ धर्मार्थ कार्यों के साथ अपने विवेक को साफ करना पसंद करते हैं। इस प्रकार वे अपनी सार्वजनिक छवि को हर चीज से पहले रखते हैं, संस्कृति और खेल में परोपकारी बनते हैं, कला के कार्यों या पूजा स्थलों को उपयोगी बनाते हैं, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते कि ईश्वर की महिमा जीवित मनुष्य है। संत पापा ने कहा, श्रमिकों के प्रति जिम्मेदारी प्राथमिकता है। जीवन को किसी भी कारण से नहीं बेचा जा सकता, खासकर यदि वह गरीब और नाजुक हो। हम इंसान हैं, मशीनें नहीं। हम अनोखे हैं, स्पेयर पार्ट्स नहीं। संत पापा ने पुनः उनकी प्रतिबद्धता के लिए अपना आभार व्यक्त किया। संत पापा ने सभी श्रमिकों के संरक्षक संत संत जोसेफ की सुरक्षा में उन्हें समर्पित किया, साथ ही अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए उनसे विदा ली। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 11 सितंबर को पूर्वी और मलंकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियन कलीसिया के मलंकरा मेट्रोपोलिटन प्राधिधर्माध्यक्ष बसेलियोस मार्थोमा मैथ्यूस तृतीय का वाटिकन में स्वागत किया। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस और संत पौलुस के शहर में जहां आपने पढ़ाई की और अब पूर्वी और मलंकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियन कलीसिया के मलंकरा मेट्रोपोलिटन प्राधिधर्माध्यक्ष के रूप में आए हैं, आपको परम प्रिय भाई के रूप में स्वागत करता हूं। आपके साथ मिलकर मैं सबसे पहले हाल के दशकों में हमारे बीच बने संबंधों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सदियों से अलगाव के बाद हमारी कलीसियाओं में मेल मिलाप द्वितीय वाटिकन परिषद के साथ शुरू हुआ, जिसमें मलंकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियन कलीसिया ने अपने कुछ पर्यवेक्षकों को भेजा था। उस समय संत पापा पॉल षष्ठम की मुलाकात 1964 में बॉम्बे में प्राधिधर्माध्यक्ष बसेलियोस आगेन प्रथम से हुई थी। सन 1983 में प्राधिधर्माध्यक्ष बसेलियोस मार्थोमा मैथ्यूज प्रथम रोम आए थे। 3 साल बाद संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कोट्टायम में कैथेड्रल ऑफ मार एलिया में उनसे मुलाकात की थी। आपका आगमन अब आपके प्राधिधर्माध्यक्षों की रोम की पहली यात्रा की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। संत पापा ने कहा, मैं मलंकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियन कलीसिया के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और विश्वासियों का भाई सुलभ अभिनंदन करता हूँ, जिनकी शुरुआत प्रेरित संत थॉमस के उपदेशों से हुई है। मुझे आशा है कि यह वही विश्वास है जिसे हम निचेया की पहली विश्वव्यापी धर्म सभा परिषद की 1700वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक साथ मनाएंगे। संत पापा ने कहा कि हमारी कलीसियाओं के बीच बातचीत के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना एक विशेष तरीके से हुई, जिसके कारण पेंतेकोस्त 1990 पर प्रकाशित एक ऐतिहासिक क्रिस्तीय समझौता हुआ। यह संयुक्त घोषणा थी जो इस बात की पुष्टि करती है कि रहस्य में हमारे विश्वास की सामग्री अवतार शब्द एक ही है, भले ही पूरे इतिहास में इसके निर्माण में शब्दावली में अंतर पैदा हुआ है। संयुक्त घोषणा के बाद आयोग ने लगभग हर साल केरल में बैठक की है और विश्वासियों के आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रेरितिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए अच्छे परिणाम हुए हैं। संत पापा ने आयोग के काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, जो सबसे ऊपर प्रेरितिक जीवन पर केंद्रित है, क्योंकि प्रेरितिक सार्वभौमवाद पूर्ण एकता का प्राकृतिक तरीका है। उधर पूर्वी यूक्रेन में 2 विदेशी सहायता कर्मियों की कथित तौर पर मौत हो गई, जब रूसी गोलाबारी उनकी वैन पर गिरी। ग्रुप रोड टू रिलीफ संगठन, जो अग्रिम पंक्ति के इलाकों से घायल लोगों को निकालने में मदद करती है, ने कहा है कि यूक्रेन के पूर्वी शहर चासिव यार के पास संदिग्ध रूसी गोले लगने के बाद उनकी वैन पलट गई और उसमें आग लग गई। हमले में कनाडाई नागरिक एंटोनी की मृत्यु हो गई, जबकि जर्मन चिकित्सा स्वयंसेवक रूबेन और स्वीडन स्वयंसेवक योहान मथियास थायर गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।